जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय, जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय श्री भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद की जय, बहुत
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी,
श्रीमद्भागवतम स्कंद 11 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 1। आप सबके पास श्लोक है, पहले देखिए और फिर इसका उच्चारण कीजिए।
श्री शुक उवाच गोविंद भुज गुप्ताया द्वारवत्यां कुरुद्वह अवात्सिन्नारदो भीक्ष्णम् कृष्णोपासनलालस। ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णववंश श्रीरूपं सग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजी साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे हे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वांछा कल्पतरु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर दारुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णे सुंदर मुखान अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम न जाने यम प्रव्रजन्तमनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिति तिष्ठतां तमोन्धम् संसारिणां करुणया हपुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीना नमः परस्मे पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्था न निरोधलीलया ग्रहीत शक्ति त्रितयाय देहिना असंभवाय नुपलक्षवर्त्मने किरातहूणा भ्रफुलिन्दपुल्कसा आभीरकङ्का यवनाखसादय येन ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मे प्रभवीष्णवे नमः प्रचोदिताजे न पुरा सरस्वती वितन्वताज स्यसतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणाप्रा दुर्भूत्किलास्यत समे ऋषीणा ऋषभ प्रसीदता भूर्तेर्महतभी यैमा पुरो विभू निर्मायशेते यदमूष पूरुष भुङ्क्तेर्गुणानशो रसषोडशात्मक सुलङ्क श्रीष्ट भगवान् वचांसि मे
हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति शुक्रवार इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। विशेष हार्दिक स्वागत करते हैं उन भक्तों का जो चरनी रोड से चीरा बाजार से आए हैं। इनके लिए महामंत्र बोलना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। बहुत कम दिन हुए हैं, पहचान हुई है, लेकिन फिर भी कम दिनों में बहुत प्रेम दिया है और इस प्रेम वश होकर यहां तक आ गए हैं। हार्दिक स्वागत है। तो यहां पर आज से एक नई कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद से गृहस्थ धर्म की कथा सुनी थी। गृहस्थ जीवन में गृहस्थियों के क्या धर्म होते हैं, क्या कर्तव्य होते हैं, यह कथा इसके पहले हुई श्रवण की। तो वह कथा प्रायः पूरी हो चुकी थी, इसलिए आज सुबह हम सोच रहे थे कि यहां पर अब कौन सी कथा। भागवत तो एक महासागर के समान है, जैसे सागर में पानी अगाध मात्रा में है, वैसे भागवत में प्रसंग श्लोक और उपदेश बहुत बहुत है। तो मैं सोच रहा था यहां पर आप सब भक्तों के बीच में किस विषय वस्तु पर चर्चा की जाए। सबसे पहले सुबह मैंने सोचा कि रामचरितमानस, भगवान श्री रामचंद्र की लीला, शिव जी का विवाह इत्यादि। तो मैं पढ़ाई भी शुरू कर दिया, पढ़ा, लेकिन पढ़ने के बाद संतुष्टि नहीं हुई। मुझे लगा कि यह तो काउंसिल वालों के लिए, जब कभी यात्रा में जाएंगे तब करेंगे। फिर समीर प्रभु आए तो मैंने उसे कहा कि अब क्या किया जाए, कौन सा टॉपिक लिया जाए। तो प्रभु जी की बहुत इच्छा थी दशम स्कंद के ऊपर कथा प्रारंभ करें और हमारी भी इच्छा रहती है। तो फिर हमने दशम स्कंद के ऊपर अध्ययन प्रारंभ किया। कुछ घंटों के बाद हुआ कि अब कुछ लोग नए नए आते हैं यहाँ पर और नए लोगों के लिए भगवान की विशुद्ध लीला बहुत हाई लेवल हो जाती है, इसलिए कृष्ण की गुह्य लीला बताने से अच्छा है कृष्ण की ऐश्वर्यमय लीला का ही श्रवण किया जाए। तो फिर से मैं सोचने लगा अब क्या करें। शाम को 6-7 बजे तब मेरे मन में यह विचार आया कि वास्तव में यहाँ पर बहुत उन्नत श्रोता आते हैं और भागवत में उन्नत विषय है मुक्ति स्कंध, क्योंकि बहुत सैद्धांतिक विषय श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंध है। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध में भागवत धर्म का वर्णन हुआ है और इसके दो वक्ता है, नारद मुनि और नव योगेंद्र। तो यह 4 अध्याय की कथा आज से हम प्रारंभ करेंगे। अब भगवान कहां तक चलाते हैं देखेंगे, 6 महीना, 1 साल, 2 साल। तो आज से यह कथा हम प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के, 11वें स्कंध के प्रारंभ से ही, 2 अध्याय से ही यह कथा है। तो श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंध जो है इसे मुक्ति स्कंध कहा जाता है। जिसे आप सबको पता हो या ना हो, भागवत में 10 तत्वों का वर्णन हुआ है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतय मन्वंतरेशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। तो इसमें 9वां तत्व है, वह है मुक्ति। मुक्ति का अर्थ प्राय सब लोग अपनी अपनी बुद्धि से समझते हैं। कुछ लोग मुक्ति का अर्थ समझते हैं भगवान में लीन हो जाना, ब्रह्म में लीन हो जाना, अपना अस्तित्व खो देना। कुछ लोग मुक्ति का अर्थ समझते हैं भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना। कुछ लोग मुक्ति का अर्थ समझते हैं भगवान के पास जाकर बैठना। परंतु मुक्ति का वास्तविक अर्थ होता है मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण व्यवस्थिति। इस संसार में हम वास्तव में हमारा मूलभूत स्वरूप है जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास। यह जीव भगवान का नित्य दास है, परंतु यह जीव भगवान के साथ जो संबंध है उस संबंध को भूलकर अपनी एक विशेष पहचान बना लेता है, तब व्यक्ति भ्रम और अज्ञान में फंस जाता है। और उस अज्ञान में फंसकर जीव इस संसार में केवल दुख ही भोगता है। इस संसार में दुख का कारण क्या है? इस संसार में दुख का कारण यही है कि जीव अपना स्वरूप भूल गया है, अपनी जो मूलभूत स्थिति है ये भूल गया है। भगवान से विमुख होकर माया के बंधन में फंसकर जीव इस भौतिक संसार में अपने आप को मनुष्य मानने लगता है, या किसी पत्नी का पति मानता है, या किसी पिता का पुत्र मानता है। परंतु यह जीव की वास्तविक पहचान नहीं है। मैं मुकेश हूं, मैं समीर हूं, या मैं अरविंद हूं, यह हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। और जब तक यह पहचान रहेगी, थोड़ा वॉल्यूम कम कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जब तक यह पहचान रहेगी तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता है। जीव का वास्तविक स्वरूप जब तक वह नहीं जान पाएगा तब तक वह दुखी ही होता रहेगा। मैं अक्सर दृष्टांत देता हूं। मान लीजिए आपको यहां से चर्चगेट जाना है और आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, और प्लेटफॉर्म पर खड़े रहकर आप अपना स्वरूप भूल जाओ। यदि कोई पुरुष है और भूल जाए कि मैं पुरुष हूं और लेडीज डब्बे में चढ़ जाए, तो फिर कितनी पिटाई होगी ये तो वो व्यक्ति ही जानता है। पिटाई होगी, ऊपर से टीसी पकड़ेंगे, पुलिस डंडे मारेंगे, वह दुखी होगा। क्यों? क्योंकि वे अपना स्वरूप भूल गया। ठीक उसी प्रकार यह जीव भगवान के साथ जीव का क्या संबंध है, यह संबंध भूल जाने के कारण वह इस संसार में मैं इसका पुत्र हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसका बाप हूं, यह पहचानों में फंस जाता है और केवल दुख भुगतते रहता है। और जब इस पहचानों से ऊपर उठकर त्रिगुणिया विषया वेदा निसत्र गुणियों भवार्जुन है अर्जुन, यह तीनों गुणों से ऊपर उठकर यदि जीव अपना वास्तविक संबंध, अपना वास्तविक स्वरूप को जानने लगता है और उस स्वरूप को जानकर उस स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उसे मुक्त कहा जाता है। इस जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास। इस संसार में सभी जीव, चाहे गधा हो या बैल हो या मनुष्य हो, मूल यह जीव भगवान का दास है, भगवान का सेवक है, कृष्ण का सेवक है। और जब जीव इस बात को जान ले, संबंध भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है इस बात को जान ले, जानने से कुछ नहीं होगा। जानने के बाद अभिधेय, भगवान के साथ संबंध को जानकर उस संबंध को पुनः स्थापित करना होगा। और स्थापित करके जब भगवान की सेवा करने जीव लगता है, जब जीव भगवान की सेवा करने लगता है और भगवान के अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उसे मुक्त कहा जाता है। तो प्रायः मृत्यु के बाद लोग मुक्त होते हैं, परंतु भगवान कृष्ण का भजन करने वाले, सेवा करने वाले तो जीते जी मुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से मुक्त होना है तो भागवत के 11वें स्कंद, मुक्ति स्कंद जिसका नाम है, ये श्रवण करना होगा। तो ये श्रवण करने से हम अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। भागवत के अलग अलग कथाओं की अलग अलग महिमा है। जैसे कल ही हमने एक कथा प्रारंभ की वृत्रासुर की, यह कथा भक्ति में पोषण देने वाली है। और यह कथा, यहां आज से हम जो प्रारंभ करने वाले हैं, ये हमारे वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने वाली यह कथा है। यह कथा यदि हम ठीक से सुनेंगे तो हम क्या है वह हम बन जाएंगे और तब हम नित्य सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए यह कथा प्रारंभ करते हैं। वैसे हमारे पास समय कम था, आपने सुना 6 बजे 7 बजे हमने डिसाइड किया, इसलिए बुक नहीं बना सके, परंतु अगले शुक्रवार को आप सबके लिए हम किताब बनाएंगे जिसमें ये सारे श्लोक 4 अध्याय के दिए होंगे, जिससे आप ठीक से श्रवण कर सकते हैं। परंतु फिर भी सबके पास आज का श्लोक तो है, तो प्रवचन सुनते वक्त श्लोक में भी नजर होनी चाहिए ताकि चैतन्य महाप्रभु इसके ऊपर बहुत ही सुंदर कहे हैं। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को भक्ति के 64 अंग का वर्णन किए हैं। 64 प्रकार की भक्ति है, जानते हैं आप लोग, 64 प्रकार की भक्ति है। और उस 64 प्रकार की भक्ति में मुख्य भक्ति 5 है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये 5 साधन जो है महाबल है। और 5 साधनों में से है सबसे पहले भक्तों का संग करना। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्ति रे श्रद्धा रे सेवन। भक्तों का संग करना, भगवान का नाम लेना, भागवत की कथा सुनना, तीर्थों में जाना और भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करना, यह 5 साधन जो है भक्ति में मुख्य है। और इस 5 साधनों में से भी कोई भी व्यक्ति 1 साधन कर ले, सकल साधन श्रेष्ठ एई पंच अंग कृष्ण प्रेम जन्माय यहा पांचेर अल्प संग। कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करने के लिए ये 5 साधनों को पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं है। यही पांचेर अल्प संग, इस 5 साधनों का थोड़ा भी संग हो जाए तो कृष्ण प्रेम जन्माए, तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सकता है। तो इस 5 साधनों में से मुख्य साधन है भागवत श्रवण करना, क्योंकि ये 5 साधनों में से देखा गया है कि भगवान के प्रति ये मन को आकृष्ट करने वाला साधन है भगवान की कथा। इस कलयुग के लोग का मन भगवान के नाम में नहीं लगता है, जैसे ही माला में हाथ डालते हैं तो दुनिया भर की बात याद आती है, आज ये करना है वो करना है। और जो विग्रह की पूजा किसके पास समय आ जाए, साधु का संग कलयुग में प्रायः मुश्किल से मिलता है और वृंदावन जाने के लिए कौन समय निकालता है। परंतु भागवत श्रवण व्यक्ति जब करने बैठता है तब पूरा पूरा मन उसमें लगता है, जैसे आप सबका लगा हुआ है। तो बहुत ही मुख्य साधन है भागवत का श्रवण करना, और इस बात को भक्तिरसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी और गहराई से कहते हैं। भागवत का श्रवण तो करना है, परंतु भागवत का श्रवण करने से कोटि कोटि गुना अच्छा है भागवत के एक एक शब्दों का आस्वादन करते हुए चले। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी, आज मैं पढ़ रहा था, बहुत ही सुंदर कहते हैं, भागवत का श्रवण करना बहुत अच्छी चीज है, परंतु यदि कोई भागवत के एक एक शब्द के श्लोक के एक एक शब्द का रसास्वादन करने लगता है तो निश्चित रूप से भक्ति बहुत जल्द उसमें पूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। भागवत के शब्द का रसास्वादन करने से भक्ति रस बहुत ही उमड़ने लगता है। तो हम प्रयास करेंगे भागवत के सभी श्लोक और शब्दों का आस्वादन करने के लिए। वैसे और सब जगह पर भागवत कथा होती है वो तो सुपर फास्ट होती है, जैसे हमने पिछले दिनों में की थी। जीवन में पहली बार ये ऐसी कथा हुई, हम कभी एक प्रवचन में एक या दो या तीन श्लोक लेते हैं, परंतु उस कथा में एक एक दिन में दो दो स्कंद। खैर, भगवान की लीला भी अजीब है, कब क्या बुलवाना चाहे। तो बहुत ही सुंदर कथा है, गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वह अवाद सीन नारदो भीष्णम कृष्णोपासन लालसा। यह श्रीमद् भागवतम का दूसरा ग्यारहवें स्कंद का दूसरा अध्याय है, परंतु इसकी भूमिका मैं आपको कह दूं। पहले अध्याय में इसकी भूमिका है, ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे, और द्वारका में बहुत ही सुंदर अपना जीवन बिता रहे थे। तो भगवान कृष्ण के वंश में, यदु वंश में एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई। दुर्घटना यह थी कि यदुवंश में कुछ ऐसे बालक उत्पन्न हो गए थे जो बिल्कुल वर्ण संकर जैसे थे। एक दिन की बात, द्वारका के करीब एक पिंडारक नाम का गांव था, जगह थी, वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि आए थे, नारद, व्यास देव जी, दुर्वासा जी भी होंगे, कल्पना की जा सकती है। तो ये यदुवंशियों के जो बालक थे उनको क्या मजाक सूझी, कई बालक एकत्रित होकर वह साधुओं की परीक्षा लेने के लिए गए। साधुओं की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, और परीक्षा भी कैसी परीक्षा ली, उस यदुवंशियों में एक शंब, क्या नाम है, सांब, यदुवंशियों में एक सांब नाम का लड़का था, उस सांब के पेट के ऊपर मुसल बांध दिया और उसको एक स्त्री का ड्रेस पहनाया गया, गर्भवती स्त्री का, रागे से पेट बड़ा हो गया। और उस सांब को लेकर यदुवंशी के सभी लड़के ये ऋषि मुनियों के पास गए, नारद, विश्वामित्र, असित देवल, दुर्वासा इत्यादि होंगे, और जाकर कहे कि गुरुजी आप बताइए कि अब इनके गर्भ से कौन जन्म लेगा। और ये सब लोग अंदर अंदर हंस रहे थे, तो सभी नारद इत्यादि ऋषि मुनियों को पता चल गया कि ये बालक लोग हमारी मजाक करने के लिए आए हैं, इसलिए इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर उस बालकों को श्राप दिया कि इसके गर्भ से कौन उत्पन्न होगा, इसके गर्भ से जो भी निकलेगा वह तुम्हारे यदुवंश का नाश कर देगा, समाप्त हो जाएगा यदुवंश। और साधुओं का, ऋषियों का जो श्राप होता है यह कभी फैल नहीं होता है, मुंह से निकल गया कि इसके घर से जो उत्पन्न होगा ये यदुवंश का नाश करेगा। ये सारे बालक बहुत डर गए कि अब तो मृत्यु निश्चित है सबकी, अब क्या करे क्या करे। सभी ये यदुवंशियों के बालक राजा उग्रसेन के पास आए और आकर कहे कि इस प्रकार से घटना हुई है। राजा उग्रसेन बहुत डर गए और डर कर अपने सैनिकों को आदेश दिया किसी के घर में जो मुसल है ये मुसल यदुवंश का के मृत्यु का कारण बनेगा, एक काम करो इस मुसल को पत्थर के साथ घसीट कर इसका चूरा बना दो और फिर जो बचे वो फेंक दो समुन्दर में सब कुछ। तो सिपाही गए और समुन्दर के पास जाकर उस मुसल को बहुत घीसे और घीस करके जो दाने निकले उसी समुन्दर के तट पर उस दाने से बांस उगे और उसी बांसों से यदुवंश का सफाया हुआ और यदुवंश में अंत में भगवान कृष्ण बचे थे। तो ये मुसल जो घसीट घीस रहे थे उसमें जो अंतिम थोड़ा सा जो बचा था, इसे माताओं को अभ्यास होगा जब गाजर का हलवा या दूधी का हलवा करना होता है तो घीसते हैं तो अंत में कुछ बच जाता है। तो इस मुसल में से जो अंतिम जो पत्थर बचा इन्होंने समुन्दर में फेंक दिया। समुन्दर में फेंका तो समुन्दर से जरा नाम का एक शिकारी था। तो जरा नाम का शिकारी मछली को पकड़ रहा था तो पत्थर का जो टुकड़ा था एक मछली ने खा लिया था और जरा नाम के शिकारी ने उसी मछली को पकड़ा और मछली को जब काटा तो अंदर से यह पत्थर का टुकड़ा निकला। तो यह जरा नाम के शिकारी ने उस पत्थर के टुकड़े को घसीट कर तीर के जो बाण के आगे जो फर होता है वह बनाया और आगे चलकर यह जरा नाम का शिकारी और कोई नहीं ये बाली था। भगवान श्री रामचंद्र ने जो वादा किया था इसने ही पूर्ण किया। तो इस प्रकार से ऐसी घटना घटी, समुद्र में यह सब कुछ फेंक दिया। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यह सब कुछ जानते थे यद्यपि ये बालकों ने कृष्ण को नहीं बताया था कि इस प्रकार से यह घटना हुई है, परंतु भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं और भगवान की इच्छा से ही यह कार्य हुआ था। इसमें भगवान की ही इच्छा थी। तो इस प्रकार से यह पहला अध्याय समाप्त करके अब इस कथा को द्वारका में लेकर चलते हैं, द्वारका के महल में। आइए द्वारका के महल में क्या हो रहा है सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। श्री शुक उवाच, आपके श्लोक में लिखा है शुक का अर्थ होता है तोता कि नहीं, शुक का अर्थ होता है तोता और सुखदेव गोस्वामी अपने अगले जीवन में तोता थे। द्वापर युग में श्रीमती राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण के पास कुछ मैसेज भेजना होता था तो राधा रानी एक तोता रखती थी, एक शुक को, और उस तोते से सब मैसेज पास होता था। और उसी दिव्य तोते को जो भगवान के धाम में है उसकी इच्छा हुई कि कलयुग में एक बार जन्म लेना है, जाकर देखना है क्या है। तो कलयुग के प्रभाव की को देखने के लिए वही तोता सुखदेव गोस्वामी के रूप में जन्म लिए, परंतु नाम तो वही रहा सुख। तो ये कथा सुनाने वाले ये सुखदेव गोस्वामी हैं और सुनने वाले महाराज परीक्षित हैं और स्थान सुखताल में गंगा नदी के तट पर बैठे हुए हैं और व्यास देव जी इस कथा को लिखे हैं। व्यास देव जी कथा को लिखते वक्त यह भी लिख सकते थे सुख उवाच, परंतु यहां पर लिखे हैं श्री सुख उवाच। श्री लिखने का क्या तात्पर्य है? श्री का अर्थ होता है सुंदरता, धनी, धनवान। श्री के बहुत सारे अर्थ हैं। सुंदरता होता है, ऐश्वर्यवान होता है, यशवान होता है, धनी होता है, यह सब कुछ सुखदेव गोस्वामी के पास था। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी के जीवन में देखा जाए तो वे एक दोरा भी नहीं पहनते थे, लेकिन फिर भी धनवान क्यों कह रहे हैं, श्री सुख क्यों कह रहे हैं? वास्तव में यह कपड़े और पैसे हो जाना, इसे धन नहीं कहा जाता है। देखिए, अर्थास्वादन करना हो तो इस प्रकार से चलना होगा, एक एक शब्द के ऊपर। अभी हम केवल श्री के ऊपर बोल रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी को श्री क्यों कह रहे हैं, तो श्री का एक अर्थ है धनवान। सुखदेव गोस्वामी तो एक चड्डी भी नहीं पहनते थे, तो उसे धनवान क्यों कहा गया? क्योंकि वास्तविक धन सुखदेव गोस्वामी के पास था। वास्तविक धन ये कपड़े और ये लक्ष्मी इत्यादि नहीं है। वास्तविक धन क्या है? एक कथा याद आ रही है। एक शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और बहुत बड़ी तपस्या करके शिव जी को प्रकट प्रसन्न कर दिया। शिव जी प्रसन्न हुए तो शिव जी ने कहा, मांगो, क्या चाहिए? तो शिव जी के उपासक ने कहा कि क्या मांगू, यदि पैसे मांगूंगा तो ये तो कभी ना कभी नष्ट खत्म हो जाएंगे। एक काम करता हूं, मुझे आप स्पर्श मणि दे दो, पारस मणि। पारस मणि एक ऐसा मणि है, ऐसा पत्थर है, यदि वह पारस मणि लोहे के साथ घिसेंगे तो लोहा भी सोना बन जाता है। शिव जी ने कहा, ठीक है, पारस मणि चाहिए, तो एक काम करो, वृंदावन में यमुना नदी के तट पर सनातन गोस्वामी नाम के भक्त रहते हैं, उस सनातन गोस्वामी के पास पारस मणि है, जाकर ले लो। तो ये तो दूसरी गाड़ी से वृंदावन गए, मथुरा उतरे, मथुरा से रिक्शा पकड़कर वृंदावन, और यमुना किनारे ढूंढ रहे थे तो बहुत दूर एक कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में जाकर देखे तो सनातन गोस्वामी हरे कृष्णा 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 हरे, भगवान के नाम का जप कर रहे थे। जब ये भगवान के नाम का जप कंप्लीट हुआ तो व्यक्ति सामने खड़ा था, प्रणाम करके कहा कि सबसे पहले तो उसके मन में हुआ कि इसके पास पारस मणि होगा, यदि इसके पास पारस मणि होता तो झोपड़े में क्यों रहता? शिव जी से विश्वास उठ गया इसका, ये शिव जी ने मुझे उल्लू बनाया है। लेकिन फिर भी सोचा, चलो पूछ लेता हूं, यदि शिव जी ने कहा है तो कुछ तो होगा इसमें। तो वसंत सनातन गोस्वामी को पूछा वो व्यक्ति कि शिव जी ने मुझे भेजा है। सनातन गोस्वामी ने कहा, तो बोलिए क्या काम है? शिव जी ने कहा है कि आपके पास पारस मणि है। सनातन गोस्वामी ने कहा, शिव जी ने सच बताया है? तो उसने कहा, मुझे चाहिए। सनातन गोस्वामी ने कहा कि आगे कोने में कचरे का डिब्बा पड़ा है, उसके नीचे ढूंढ लो, मिल जाएगा आपको। तो इसने कचरे का डिब्बा हटाया और बहुत खोदा तो अंदर पारस मणि उसे प्राप्त हुआ, और पारस मणि लेकर बहुत खुश हो गया और खुश होकर वह तो निकल गया। लेकिन बहुत बुद्धिमान था, कलयुग का जीव था ना। और रास्ते में जाते जाते स्टेशन पर पहुंचा तो उसको विचार आया कि वे सनातन गोस्वामी ने इस पारस मणि को कचरे में फेंक दिया था। इसका अर्थ है कि उस साधु के पास इस पारस मणि से भी कोई बड़ा धन है, नहीं तो कचरे में क्यों फेंकते? हमारे पास जो कोई काम की चीज नहीं है वही हम कचरे में फेंकते हैं, या हमारे पास कोई बड़ी चीज है तो छोटी चीज को फेंक देते हैं। तो इसने सोचा कि लगता है इस पारस मणि से भी बड़ी चीज उस संत के पास है। तो फिर से आया यमुना नदी के तट पर, आकर सनातन गोस्वामी से प्रार्थना किया और कहा कि आपने ये पारस मणि को कचरे में फेंक दिया और वो भी कितने दिनों से पड़ा है, मुझे तो बहुत खोदना पड़ा, गाड़ना पड़ा, तो आपके पास इससे भी कोई बड़ी वस्तु है? सनातन गोस्वामी ने कहा, जी मेरे पास तो इससे करोड़ों गुना बड़ी वस्तु है, इसलिए तो मैंने इसको कचरे में फेंक दिया है। तो व्यक्ति ने कहा कि अब मुझे पारस मणि नहीं चाहिए, अब आपके पास जो इससे भी बड़ी वस्तु है वो मुझे दो। सनातन गोस्वामी ने कहा, हाँ वो मैं आपको दूंगा, लेकिन थोड़ा कम कीजिए आवाज, हरे कृष्णा, वो मैं आपको दूंगा, लेकिन सबसे पहले ये पारस मणि को यमुना में फेंक दो। ये व्यक्ति ने पारस मणि को यमुना में फेंक दिया और सनातन गोस्वामी ने कहा कि ये पारस मणि तो ये पृथ्वी का धन है, मेरे पास जो धन है ये पृथ्वी का नहीं है, पृथ्वी के ऊपर जन लोक का भी नहीं, मर लोक का भी नहीं, स्वर्ग लोक का भी नहीं, ब्रह्म लोक का भी नहीं, वैकुंठ का भी नहीं, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन सबसे बड़ा धन यदि कोई है तो भगवान का नाम है, भगवान के नाम से बड़ा धन इस संसार में कोई नहीं है। हरे कृष्णा हरे भगवान का नाम रूपी धन मेरे पास है, इसे जपो, ऐसे हजारों हजारों पारस मुनि से भी ज्यादा आनंद आप पाएगा। तो तात्पर्य यह है कि सबसे बड़ा धन क्या है, भगवान का नाम। सुखदेव गोस्वामी के पास ये साधारण धन नहीं था, भगवान का नाम भगवान की लीला रूपी धन था, इसलिए वे बहुत बड़े धनी थे, इसलिए श्री कह रहे हैं। इस प्रकार से श्री के ऊपर बोलते जाएंगे तो फिर और श्री का एक अर्थ होता है सुंदरता। सुखदेव गोस्वामी बहुत मेकअप करते थे, अरे जो कपड़े नहीं पहनते थे वो मेकअप क्या करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर कह रहे हैं श्री सुखवाच। इस संसार में तो हम क्रीम लगाकर, शैंपू लगाकर, साबुन लगाकर रोज सुबह और दिन में 3 बार करते हैं, लेकिन फिर भी सुंदरता नाम की चीज नहीं आती है, और आती भी है तो जब तक मेकअप है तब तक, या जब तक जवानी है तब तक। परंतु सुखदेव गोस्वामी वास्तविक सुंदर थे। सुखदेव गोस्वामी के वर्णन में आया है कि भगवान जितने सुंदर थे सुखदेव गोस्वामी श्याम वर्ण के थे और बहुत सुंदर उनका 16 साल के दिखते थे। जब परीक्षित महाराज के पास सुखदेव गोस्वामी पहुंचे तब वे 16 साल के थे। कहते हैं श्री सुखवाच। तो वैसे बहुत सारे अर्थ हैं लेकिन एक दो अर्थ ठीक है। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी उवाच का अर्थ है बोले। किसको बोले? परीक्षित महाराज को। सुखदेव गोस्वामी यह कथा महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं और यह 11वां स्कंध है, इसलिए यह कथा समझ लीजिए 6ठे या 7वें दिन की यह कथा है, अंतिम दिन की यह कथा है। परीक्षित महाराज की शाम को मृत्यु है और सुबह यह कथा सुना रहे हैं। और हमारे जीवन में भी कुछ भरोसा नहीं है कब मृत्यु आ जाए, घर पर पहुंचे या नहीं पहुंचे यह भी भरोसा नहीं, इसलिए बेस्ट है यह कथा सुनना। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुद्वह, परीक्षित महाराज को संबोधन दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। देखिए, आप लोग कथा सुनने के लिए प्रति शुक्रवार को आते हो, मैं यहां से कथा करता हूं, तो मुझे सबका नाम ले लेकर कहने की आवश्यकता नहीं है, हे समीर प्रभु सुनिए, हे अचिंत्य चक्र प्रभु सुनिए, ये आवश्यकता नहीं है, कथा कह दीजिए, किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो वैसे 7 दिन 7 रात से परीक्षित महाराज लगातार कथा सुन रहे थे, तो उसमें नाम लेने की क्या आवश्यकता है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का नाम ले रहे हैं, हे कुरुद्वह, हे कुरु नंदन। तो जब व्यक्ति कथा करते करते किसी का नाम लेता है तो उसमें बहुत भाव छिपा होता है। तो सुखदेव गोस्वामी का परीक्षित महाराज को कुरुद्वह कुरु नंदन कहने के पीछे 2 भाव है। सबसे पहले कुरु नंदन का अर्थ क्या होता है? नंदन का अर्थ होता है आनंद, जैसे देवकी नंदन, जो देवकी को आनंद देने वाले हैं उसे देवकी नंदन कहते हैं। यहां पर क्या कर रहे हैं? कुरु नंदन, जो कुरु वंश को आनंद देने वाले हैं उसे कुरु नंदन कहते हैं। परंतु अब एक प्रश्न उठता है कि इसके समाज वाले तो कोई बचे नहीं है, कुरु वंश तो पूरा साफ हो गया है और ये भी साफ होने जा रहे हैं, तो ये किसको आनंद दे रहे थे कुरु नंदन? ये कह रहे हैं कि हे कुरु वंश को आनंद देने वाले, तो कुरु वंश तो हरिबोल हो गए थे, कुरुक्षेत्र की भूमि में प्राय सब लोग मर चुके थे और पांडव लोग कृष्ण के जाने पर ये भी चले गए थे, तो कुरु नंदन गुरु को आनंद देने वाले, इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति भजन करता है, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, वे मरे हुए लोगों को भी आनंद देता है। मान लीजिए किसी के पति या किसी के पिता मर चुके हैं, परंतु जो व्यक्ति यहाँ पर जीवित है, उसकी पत्नी या उसका पुत्र, और इस संसार में यदि वह भक्ति करते हैं, तो जो व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, वह व्यक्ति इसे देखकर आनंदित होते हैं। और इस यदि जिसकी मृत्यु हो गई है, उसका संबंध इस व्यक्ति के साथ है जो भजन करता है, तो उसका कई गुना फल उस व्यक्ति को भी मिलता है। इसलिए वो जिस गति में जहां पर है, वहां पर रहकर आनंदित होते हैं। इसलिए हे गुरु नंदन, पहला शब्द कह रहे हैं गुरु नंदन। वास्तव में हमारे पूर्वजों को या जिसकी मृत्यु हो गई है, उसे आनंद देना है, उसकी सदगति यदि हम चाहते हैं, तो हमें भजन करना चाहिए। परीक्षित महाराज यह कथा सुनने के पहले बहुत बहुत विचार आए थे कि मैं दान करूं या तीर्थाटन करूं, लेकिन यह सब कुछ छोड़कर भागवत सुनने के लिए बैठे, और इसलिए सुखदेव गोस्वामी गुरु नंदन कह रहे हैं। भागवत सुनना एक भक्ति है, और भक्ति जब व्यक्ति करता है, तो उनके जो पूर्वज हैं, वे आनंदित रहते हैं। इसलिए कहते हैं हे गुरु नंदन। और दूसरा भाव यह है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कुरुवंश की याद दिला रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहना चाहते हैं कि परीक्षित, ये पूरा कुरुवंश हरिबोल हो गया था, और आप भी नहीं बचे होते यदि भगवान ने आपकी रक्षा नहीं की होती। आज कुरुवंश का कोई यहां पर जीवित नहीं होता था। ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई, क्योंकि जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया, तो अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र चलाए, 5 ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों पर, और 1 ब्रह्मास्त्र ये परीक्षित महाराज जब गर्भ में थे, तो उनकी माता उत्तरा के गर्भ पर। ये सब पूरा कुरु वंश समाप्त हो जाने वाला था, परंतु कृष्ण ने वह ब्रह्मास्त्र से तुम्हारी रक्षा की है। तो हे परीक्षित, हे गुरु नंदन, मैं तुम्हें यह कहने जा रहा हूं कि आगे के अध्याय में जो कथा हुई कि कुरु यदु वंश को श्राप मिला कि ये लोग नष्ट हो जाएंगे, तो जरा सोचिए, आप इस कथा के ऊपर शंका मत कीजिए कि भगवान का वंश, भगवान का कुल समाप्त हो जाएगा। अरे जो भगवान गर्भ में रहने वाले बालक की ब्रह्मास्त्र से रक्षा करते हैं, कर सकते हैं, तो क्या वे अपने कुल के बालकों की रक्षा नहीं कर सकते हैं? जो भगवान किसी व्यक्ति की ब्रह्मास्त्र, जो अमोघ बाण है, जो कभी फेल नहीं होता है, ब्रह्मा जी चाहे तो भी उसे शमन नहीं कर सकते हैं, ऐसे ब्रह्मास्त्र से हे परीक्षित तुम्हारी रक्षा की, तो क्या वो भगवान अपने कुल की रक्षा नहीं कर पाएंगे? एक साधारण श्राप से कर पाएंगे, परंतु ये भगवान की इच्छा है कि यदु वंश को श्राप लगे। इसलिए हे गुरुद्वह, हे गुरु नंदन, तुम इसमें शंका मत कीजिए। तो इस प्रकार से एक शब्द के इतने भाव है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे गुरु नंदन, हे परीक्षित, नारद कृष्ण पासन लालस, हे परीक्षित, नारद के मन में कृष्ण की निकट सन्निधि में रहने की बड़ी लालसा थी। देखिए कथा प्रारंभ हो रही है। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नारद मुनि को भगवान के पास कृष्ण उपासन लालसा, नारद मुनि को भगवान के पास, कृष्ण के पास रहने की बहुत लालसा रहती है। नारद मुनि को तो आप सब लोग जानते हैं, सब लोग अवगत हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और 24 घंटा नारायण नारायण भगवान का नाम जपते रहते हैं। ये नारद मुनि 24 घंटा भगवान के पास ही पड़े रहते हैं। वे सोचते हैं कि मैं कृष्ण के साथ ही रहूंगा, और इसलिए कहते हैं कृष्ण उपासन, उप आसन, उप का अर्थ है निकट, आसन का अर्थ है बैठना। तो एक आचार्य बहुत ही सुंदर कहते हैं, विनोद में कहते हैं कि उपासन, ये नारद मुनि कृष्ण के बाजू में बैठने के लिए आसन साथ में लेकर ही घूमते थे, कब कृष्ण बैठे और मैं भी आसन लगाकर बैठ जाऊं। उपासना कृष्ण के बाजू में बैठने की लालसा थी, और इसीलिए नारद मुनि इतना बड़ा प्रचार कर सके। वास्तव में इस संसार में सभी भक्तों की यही लालसा होनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के पास बैठे। कृष्ण के पास बैठने का अर्थ क्या है? मंदिर में बैठे। इस कलयुग में कृष्ण उनके अर्च विग्रह के रूप में विराजमान है, इसलिए नारद मुनि की तरह हमें भी भगवान के पास, भगवान की बाजू में बैठने की लालसा होनी चाहिए। सभी भक्तों की यह लालसा होनी चाहिए कि प्रति रविवार को हम इस्कॉन मंदिर में जाएं और ज्यादा से ज्यादा भगवान के निकट बैठें। जब ऐसी लालसा होगी तब नारद मुनि की तरह भजन कर पाएंगे, नहीं तो आया राम गया राम चलता है सब। तो कृष्ण उपासना लालसा, नारद कृष्ण उपासना लालसा। नारद मुनि को अपने मन में कृष्ण के बाजू में बैठने की बहुत लालसा थी, तो बहुत लालसा थी इसलिए अतः गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वह। इसलिए नारद मुनि बारंबार द्वारका में आते रहते थे। नारद मुनि को कृष्ण के पास बैठने की बहुत लालसा थी इसलिए बारंबार द्वारका में आते रहते थे। और इस शब्द में बहुत बहुत भाव छिपा है। द्वारका को कैसे कैसा कहा जा रहा है, द्वारवत्याम कैसी है, तो कहते गोविंद भुज गुप्तायाम। द्वारका जो है गोविंद की भुजाओं से रक्षित है, जैसे वैकुंठ की रक्षा करने वाले जय और विजय है, परंतु द्वारका की रक्षा तो गोविंद भगवान कृष्ण अपने हाथों से करते हैं, इतना प्रेम करते हैं अपनी द्वारकापुरी से। और वैसी ही ब्रज वृंदावन की रक्षा भी गोविंद भुज गुप्त भागवत में आया है। जैसे द्वारका की रक्षा भगवान गोविंद भुज गुप्तायाम और वृंदावन की रक्षा भी भगवान गोविंद भुज गुप्त भगवान अपने हाथों से करते हैं। और ये तो भगवान ने प्रकट दिखा दिया। इंद्र ने जब प्रकोप किया, सांबर तक मेघ को आदेश दिया, बरज को बहाने का ऐलान किया, केवल एक हजारों वर्षों से इंद्र की पूजा ब्रज के लोग करते आए थे, परंतु एक साल नहीं करने पर इंद्र ने बहुत बहुत बारिश बरसाई और पूरे वृंदावन को बहाने के लिए इंद्र ने ऑर्डर दिया। और जब बहुत बहुत पानी वृंदावन में भरने लगा, सारा ब्रज डूबने लगा, तब भगवान ने अपने ही हाथ से अपनी एक कनिष्ठा कानी उंगली से गोवर्धन को धारण किया था। तो भगवान ब्रज वृंदावन की रक्षा भी अपने हाथ से करते हैं, द्वारका की रक्षा भी अपने हाथ से करते हैं, परंतु वैकुंठ की रक्षा जय और विजय को दे देते हैं, आप संभालिए। इसका अर्थ है भगवान अपनी द्वारकापुरी और अपने गोलोक वृंदावन से बहुत प्रेम करते हैं, भगवान अपने हाथों से रक्षा करते हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं कि जीव भगवान से विमुख होकर माया में फंस जाता है और इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक ये सभी प्रकार के दुखों में फंस जाता है। इस संसार में जीव बहुत दुखी होता है ये सब दुखों को लेकर, परंतु वास्तव में ये दुखों से मुक्त होना है तो भगवान अपने हाथों से जिस धाम की रक्षा करते हैं उस धाम में यदि चले जाएंगे और उस धाम में भगवान अपने हाथों से हमारी रक्षा करेंगे। तो इस संसार में जब तक है तब तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हम दुखी होते रहेंगे, परंतु भगवान के धाम में यदि हम चले गए तो वहां पर दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि गोविंद भुज गुप्त, क्योंकि गोविंद अपने हाथों से द्वारका और वृंदावन की रक्षा करते हैं। इसलिए हम सबको यह सभी दुखों से मुक्त होना है और नित्य आनंद चाहिए तो भगवान के धाम को प्राप्त करना अति आवश्यक है। तो भगवान के धाम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भक्ति के द्वारा। और भक्ति का अर्थ है श्रवण और कीर्तन। इस प्रकार से भगवान की कथा सुनकर और भगवान का नाम लेकर हम उस भगवान के धाम में जा सकते हैं जिस धाम की रक्षा भगवान अपने हाथ से करते हैं। हरे कृष्णा तो है कुरुद्वह। नारद के मन में कृष्ण के पास बैठने की बहुत लालसा के कारण वे भगवान के भुजाओं से जो सुरक्षित है ऐसी द्वारका में अवासित अभीष्णम अभिश्रम का अर्थ है बारंबार आते रहते थे। नारद मुनि द्वारका में ही पड़े रहते थे। यहां पर एक प्रश्न होता है कि नारद मुनि को दक्ष प्रजापति के द्वारा श्राप मिला हुआ है कि वे किसी भी जगह पर दो मिनट से ज्यादा नहीं खड़े रह सकते हैं, और यहां पर ये कह रहे हैं बारंबार नित्य निरंतर यहां पर रहते हैं। तो आचार्यगण कहते हैं ये तो आप जानते हैं, नारद मुनि को श्राप मिला था। दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र थे और 10,000 पुत्र का विवाह दक्ष प्रजापति कराना चाहता था, सबको गृहस्थ बनाना चाहता था। परंतु ये दक्ष प्रजापति के पुत्र तपस्या करने गए और जब घर पर आ रहे थे तो नारद मुनि बीच रास्ते में मिल गए और 10,000 को एक साथ ब्रह्मचारी बना दिए, और पिता की मनोकामना अधूरी रह गई। बच्चे होंगे, पोत्र होंगे, हम खिलाएंगे खेलेंगे। तो दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्र जब ब्रह्मचारी बन गए तो फिर से 1,000 पुत्रों को जन्म किया। इसका नाम दक्ष था, पुत्र उत्पन्न करने में दक्ष था, इसलिए ब्रह्मा जी ने नाम ही दक्ष रख दिया। तो ये 1,000 पुत्र तपस्या करने गए तो नारद मुनि फिर से इस 1,000 पुत्रों को मिले, इसे भी ब्रह्मचारी बना दिए। अब दक्ष प्रजापति ने सोचा जितना पैदा करते जा रहा हूं ये नारद अपनी तरह ब्रह्मचारी बनाते जा रहा है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं, संसार के लोग पुत्र उत्पन्न करने में बहुत दक्ष है। पैसे कमाते या नहीं कमाते हैं, घर पर खाने के ठिकाने नहीं है परंतु बच्चे 4-5 होंगे। पुत्र उत्पन्न करने में दक्ष है, परंतु प्रभुपाद जी की इस्कॉन संस्था में आने वाले भक्तों को भी नारद मुनि की तरह प्रवर होना चाहिए कि संसार के लोग जितने पुत्र उत्पन्न करे परंतु हमें सबको ब्रह्मचारी या भक्त बना देना चाहिए। तो इस प्रकार से 1,000 पहले, 10,000 पहले और बाद में 11,000 पुत्रों को जब ब्रह्मचारी बना दिया तो दक्ष प्रजापति बहुत दुखी हुए और दुखी होकर नारद मुनि को श्राप दे दिया कि तुम एक जगह पर खड़े रहते हो, इसलिए प्रवचन होता है ना 1-1.5 घंटे का, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि 2 क्षण के लिए भी एक जगह पर नहीं खड़े रह पाओगे। यद्यपि दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा श्राप दे दिया परंतु नारद मुनि ने तो हंसकर स्वीकार कर लिया कि वास्तव में हे दक्ष प्रजापति, आपने मुझे श्राप नहीं, आपने मुझे तो वरदान दिया है, क्योंकि अब तक तो मैं एक एक जगह पर आलसी की तरह खड़ा रह जाता था परंतु अब से परिव्रजाचार्य पूरी दुनिया में, पूरे भूमंडल में, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करता रहूंगा और अब से और ज्यादा लोगों को भक्त बनाऊंगा। अब तो आपने वीजा दे दिया है, अब तक तो भारत में ही बना रहा था परंतु आपने कहा कि एक जगह पर नहीं खड़े रह सकते, अब तो बहुत लोगों को बनाएंगे। तो इस प्रकार से दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं खड़े रह सकते हो। और यहां पर कह रहे हैं कि नित्य अभीक्ष्णम, बारंबार नारद मुनि द्वारका में रहते थे। तो ये कैसे इसको समझा जाए? इसका अर्थ यही है कि कितना भी बड़ा श्राप क्यों न हो, यदि व्यक्ति भगवान के पास चला जाता है या भगवान के धाम में चला जाता है तो वह श्राप कुछ भी उस व्यक्ति का बिगाड़ नहीं सकता है। तो उस वक्त ऐसा श्राप था, इस कलयुग में तो सबको श्राप लगा है कि दुखी होते रहेंगे, चाहे वो पत्नी से हो, पुत्र से हो या समाज से हो, ये सबको श्राप लगा हुआ है। परंतु यदि इस श्राप से बचना चाहते हो तो भगवान के धाम में जाना चाहिए, और भगवान के धाम का सैंपल है इस्कॉन के सेंटर, भगवान के मंदिर में कम से कम रविवार को हम जाएंगे तो हम ये श्राप से मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इस प्रकार से नारद मुनि बारंबार आते थे। किसी ने प्रश्न पूछा, नारद मुनि बारंबार कृष्ण के पास क्यों रहना चाहते थे, इसका मूल कारण क्या है? दुखी थे इसलिए? नारद मुनि दुखी नहीं थे। नारद मुनि का कृष्ण के पास रहने का मूल कारण क्या है? तो कहते हैं कृष्ण की सुंदरता। कृष्ण इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि उससे दूर जाने का मन ही नहीं होता है। तो कृष्ण की सुंदरता के कारण कृष्ण के रूप को नारद मुनि पीते रहते थे और उसमें नारद मुनि को दूर जाने का मन नहीं होता था। क्योंकि वास्तव में कृष्ण की सुंदरता बहुत मधुर है। कृष्ण के सभी अंग, वल्भाचार्य जी बहुत ही सुंदर एक भजन लिखे हैं, होठ भी मधुर है, अधरम मधुरम,
अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधर नयनम मधुरम हसितम मधुरम, नयन
कृष्ण का होठ मधुर है, मुख मधुर है, आंखें मधुर है, और उसका हंसना भी मधुर है।
नयनम मधुरम हसितम मधुरम, नयन हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम,
अधरम मधुरम, भगवान के अधर, भगवान के होठ मधुर है, वदनम मधुरम, भगवान का मुख मधुर है, नयनम मधुरम, भगवान की आंख मधुर है, हसितम मधुरम, भगवान का हंसना भी मधुर है, हृदयम मधुरम, भगवान का हृदय मधुर है, गमनम मधुरम, भगवान का चलना भी मधुर है। अब क्या बताऊं ज्यादा, मधुराधिपते उस मधु के पति भगवान कृष्ण का सब कुछ मधुर है, अखिलम मधुरम,
वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वचनम वसनम मधुरम वलितम मधुरम, वस चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, चलित मधुराधिपते रखिलम मधुरम,
वचनम मधुरम, भगवान जब बोलते हैं उनकी वाणी मधुर है, चरितम मधुरम, भगवान का चरित्र मधुर है, वसनम मधुरम, भगवान के ड्रेस वस्त्र भी मधुर है, वलितम मधुरम, भगवान का बोलना, चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, भगवान का भ्रमण करना, वे कुछ भी भ्रमण करते हैं तो मधुर है। क्या बताएं, इस मधुरापति का सब कुछ मधुर है।
वेणुर मधुरो रेणु मधुर वे, पाणी मधुर पादो मधुरो पा, नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम, नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुर,
वेणु मधुर भगवान की बांसुरी मधुर है, रेणु मधुर भगवान की चरण रेणु भी मधुर है, पाणी मधुर भगवान के हाथ मधुर है, पादो मधुर भगवान के चरण मधुर है, नृत्यम मधुरम भगवान का नृत्य मधुर है, साख्यम मधुरम भगवान की साख्य लीला मधुर है। क्या बताए, इस मधुरापति के सब कुछ मधुर है।
गीतम मधुरम पीतम मधुरम, गी भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं
गीतं मधुरं भगवान जब गाते हैं तो यह मधुर है। पीतं मधुरं भगवान कुछ भी पीते हैं तो यह भी मधुर लगता है। भुक्तं मधुरं भगवान का भोजन करना मधुर है। सुप्तं मधुरं भगवान जब सोते हैं तो यह भी मधुर है। रूपं मधुरं भगवान का रूप मधुर है। तिलकं मधुरं भगवान का तिलक भी मधुर है। क्या बताएं इस मधुरापति का तो सब कुछ मधुर है।
करणं मधुरं तरणं मधुरं करणं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वामितं मधुरं शमितं मधुरं वामितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरं
करणं मधुरं भगवान की जो करनी है ये कुछ भी करते हैं तो मधुर लगता है। तरणं मधुरं भगवान जिसका उद्धार करते हैं तारते हैं यह भी मधुर है। हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं भगवान को किसी का मारना भी मधुर है। शमितं मधुरं किसी को दंड देना भी मधुर है। क्या बताएं इस मधुरापति का सब कुछ मधुर है।
गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीचो मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं
गुंजा मधुरा माला मधुरा भगवान जो माला पहनते हैं ये मधुर है। यमुना भगवान की जो यमुना पटरानी है ये मधुर है। वीचो मधुरा उस यमुना में जो तरंगे उठती हैं वह भी मधुर है। सलिलम मधुरम वह जल भी मधुर है। कमलम मधुरम उस पे जो कमल उठते हैं वह भी मधुर है। क्या बताएं इस मधुरापति का अखिल सब कुछ मधुर है। इस बात को सब लोग स्वीकार किए हैं। सुखदेव गोस्वामी हो या जयदेव गोस्वामी हो या बिल्वा मंगल ठाकुर ये सब लोग अपनी प्रार्थना में इस बात को लिखे हैं।
गोपी मधुरा लीला मधुरा गो युक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं रिष्टं मधुरं श्लिष्टं मधुरं रिष्टं मधुरं श्लिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं
तो ये 8 श्लोकों का मधुराष्टकम है। भगवान का सब कुछ मधुर है, गोपी मधुर, भगवान की लीला मधुर, गोपी के साथ जो संबंध है वह मधुर है, गोपियों के साथ आलिंगन करना ये मधुर है, क्या बताएं, सब कुछ मधुर है। और इसी मधुरता के कारण नारद मुनि भगवान कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं, यह कारण है यह गाने का। भगवान का रूप बहुत ही मधुर है। और यहाँ पर बारंबार कहा गया है, इस पर एक अंतिम बात सुन लीजिए। नारद मुनि को बारंबार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नारद मुनि उस द्वारका में बारंबार आते थे, बारंबार रहते थे। इसका अर्थ है कि कंटिन्यू नहीं रहते थे, जाकर वापस आते थे, कहीं जाकर वापस आना। इसका अर्थ है, आचार्य गण अपनी बुद्धि लगाकर कहते हैं कि नारद मुनि भगवान से चिपक कर ही रहते थे, इसलिए भगवान बहुत डिस्टर्ब होते थे। कभी कभी संसार में होता है कुछ कुछ गुरु भी अपने चेलों से बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। और हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु को जितने डिस्टर्ब चेले करते हैं, शिष्य करते हैं, उतने बाहर के लोग नहीं करते हैं। तो नारद मुनि, अब कृष्ण की 16108 पटरानी थी, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती इत्यादि, कालिंदी इत्यादि। तो भगवान को रुक्मणी के घर पर जाना होता तो नारद मुनि भी साथ में चले जाते अंदर, अब बेडरूम में उसका क्या काम है। लेकिन नारद मुनि पीछा नहीं छोड़ते थे। अब भगवान भी तो बुद्धिमान है, जब रुक्मणी के घर पर जाते तो नारद मुनि को कहते थे कितने दिनों से युधिष्ठिर का समाचार नहीं सुना है, जरा जाकर देख कर आओ क्या हाल में है। तो नारद मुनि कहते थे अभी जाकर आया। तो रुक्मणी के कमरे में चले जाते थे, नारद मुनि 5 मिनट में रुक्मणी के कमरे से बाहर निकले तब तक तो समाचार लेकर आ जाते थे, प्रभु सब लोग ठीक है, अब क्या करें। तब दूसरी रानी के घर पे जाने के लिए अब दूसरा कुछ उपाय बनाना पड़ता था, भगवान को वहां जाकर जरा देख कर आओ क्या करना, क्या करते हैं। तो इस प्रकार से नारद मुनि को भेजते थे, वे वापस आते थे, भेजते थे वापस। इसलिए यहां पर कर रहा है अभीक्ष्णम, बारंबार भगवान नारद मुनि से परेशान हो गए थे। ये लीला है, इसे परेशान नहीं होते हैं भगवान अपने भक्त से, परंतु बारंबार का भाव यह है कि भगवान भेज देते जाओ और भगवान अपना काम करते थे तो वापस आ जाते। तो इस प्रकार से नारद मुनि बारंबार इस द्वारकापुरी में रहते थे। अब ये कथा बहुत ही सुंदर, आज के दिन तो यही पता चला कि ये नारद मुनि द्वारका में रह रहे हैं। अब द्वारका में रहते रहते 3 श्लोक के बाद वसुदेव जी नारद मुनि के पास आएंगे, प्रार्थना करेंगे और नारद मुनि को कहेंगे कि भागवत धर्म का उपदेश दो। तो नारद मुनि इस कथा को निमि महाराज, जो राजा जनक थे, वे निमि महाराज बने। निमि महाराज के वहां ऋषभ देव के 9 पुत्र 9 योगेंद्र वहां पर आए हैं और निमि महाराज ने ऋषभ देव के 9 पुत्र को 9 प्रश्न किए हैं और वही 9 प्रश्न के उत्तर ये भागवत धर्म है, उसी पर पूरा भागवत धर्म, धर्म का बेस यह है। तो यह कथा आगे चलकर आएगी, तो आप सब लोग इसमें आइए और यह सुनकर अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे। तो सार यही है, इस कलयुग में जो श्राप लगा है सब लोग दुखी है, इससे मुक्त होना चाहते हैं, तो नारद मुनि की तरह कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहिए। कृष्ण के साथ, कृष्ण के साथ रहने का अर्थ है कृष्ण के नाम के साथ रहना, क्योंकि अभिन्नत्वा नाम नामनी, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, नाम नाम में कोई भेद नहीं है। इसलिए जब तक भगवान का नाम हमारे साथ है, हमारी जीवा पर है, तब तक हम भगवान के साथ हैं। जैसे यह नाम बंद हो जाएगा तो संसार के दुख क्लेश सब आने लगेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुनिए और भगवान का नाम जपिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।